نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى كنام رب پڑھ کے آپ کو کیسا لگا؟ کیا آپ کو اپنی نماز میں رب کا لفظ یاد رہا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ رب وہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللطیف بھی ہے، الخبیر بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، حلیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، یعنی سارے نام یہ اسی میں آ گئے. تو اس نام کو جاننے کے بعد جو ہمارا جب ہم نماز پڑھیں تو جو ہمارا ادا کرنے کا اس نام کو طریقہ ہے وہ بدل جانا چاہیے، جو اس کے پیچھے تصور ہے وہ بدل جانا چاہیے. رب بس ایسے ہی رب نہیں بولنا بلکہ معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بولنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کیفیت ہی بدل جاتی انسان کی. اور اس نام کو جاننے کے بعد پھر ہمیشہ یاد رکھیں کہ سوال کسی اور سے نہیں کرنا، صرف اسی رب سے کرنا ہے. اگر ایک چھوٹے بچے کو یہ سمجھ ہے کہ مجھے جو کچھ دے گی میری ماں ہی دے گی، تو پھر کیا ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ جو بھی دے گا وہ میرا پالنے والا ہی مجھے دے گا؟ اور اگر انسان اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس بھی جاتا ہے، کسی اور در پہ بھی جاتا ہے، تو جانتے ہیں یہ کیسا ہے؟ ایک مثال سے اس کو سمجھے. اگر آپ کے گھر کوئی گیسٹ آئے ہیں اور آپ کا بچہ جا کر ان کو اپنے دکھڑے سنانا شروع کر دے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور میرے پاس وہ نہیں ہے، فلاں میری ضرورت ہے، فلاں میری ضرورت ہے، اور آپ کو اگر پتہ چل جائے تو آپ کو کتنی اپنی بے عزتی محسوس ہوگی نا، کہ میرا بچہ ہے تو مجھ سے کہے، آج تک میں نے کیا اس کو کچھ نہیں دیا جو دوسروں سے جا کے کہنے لگے؟ کتنا غصہ آئے گا اپنے بچے پہ. اور اس پہ اگر بالفرض جو مہمان ہے وہ آپ سے کہہ دیں کہ بہن بچے کو یہ چیز لے دو نا، تو تب تو اور بھی غصہ آئے گا کہ مجھے اپنے بچے سے زیادہ ہمدردی ہے یا تمہیں ہے؟ اگر میں نہیں دلا رہی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، ورنہ کیا میں اپنے بچے کی ہمدرد کافی نہیں ہوں؟ وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہترین مثال ہے، لیکن جسٹ ایک سمجھانے کے لیے یہ سوچیں، اگر انسان اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ بھی جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو کیسا لگتا ہوگا کہ آج تک کیا میں نے اس کو کچھ نہیں دیا کہ یہاں سے مایوس ہو کے وہاں چلا گیا اور وہاں شفا مانگنے لگا، وہاں اولاد مانگنے لگا، وہاں رزق مانگنے لگا، وہاں مسئلوں کا حل مانگنے لگا. ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہماری ان کے آگے ہے اور ان کی اللہ کے آگے ہے، وہ کہیں گے تو اللہ دے گا. یہ بتائیں آپ کو کیسا لگا جب آپ کی گیسٹ نے کہا کہ اس کو دے دو نا، کیا اور زیادہ غصہ نہیں آیا تھا کہ بچہ تو میرا ہے، دوں یا نہ دوں میری مرضی ہے، میرے سے زیادہ اس کا ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ اور میں نے نہیں دیا تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. اب اس مثال کو اسی طرح سمجھیں، ہمیں اپنے لیے تو بڑی غیرت آتی ہے اگر کوئی ہمیں کہے بچہ میرا ہے. اسی طرح ہم بندے اللہ کے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور یہ سوچ کے کہ وہ کہے گا تو پھر نہیں. کیا آج تک اللہ نے ہماری ضروریات پوری نہیں کی؟ کیا اس کے سوا بھی کوئی ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے جس کو زیادہ پتا ہو کہ ہمیں کیا چیز ملنی چاہیے؟ کیا وہ ہمارا خیر خواہ نہیں؟ تو زندگی بھر بھول کے بھی کسی اور طرف کا رخ نہیں کرنا، چاہے ملے نہ ملے اس در کو نہیں چھوڑنا کہ اللہ ملے گا تو یہیں سے ملنا، میں نے کہیں اور جانا ہی نہیں، تو جو میرا رب ہے. ہر امید، ہر آس اور ہر سوال اپنے رب سے ہی رکھے. और किसी से भी नहीं। आज हम अल्लाह ताला का जो नाम देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नाम। इसके अल्लाह ताला के तो सारे ही नाम बहुत खूबसूरत हैं और सारे ही नाम उसकी मोहब्बत की झलक है, उसकी मोहब्बत पे दलालत करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आज जो हम नाम देख रहे हैं ना, इसमें तो अल्लाह ताला की डायरेक्ट मोहब्बत जाहिर होती है अपने बंदों के लिए। और ये नाम है अल वहाब। वहाब वाओ हा बा से इतना खूबसूरत नाम है इसलिए क्योंकि इमाम राग़िब कहते हैं कि वहाब में इंसान अपनी चीज़ किसी को देता है और बग़ैर किसी बदले के। जब अल्लाह ताला के लिए ये नाम आ जाता है अल वहाब, तो वो ज़ात है जिसके तोहफे किस्म किस्म के लम्हा लम्हा हर शोबे में हर जगह बेहद्दो हिसाब और बग़ैर किसी गर्ज के और बग़ैर किसी बदले के अता होते हैं, यानी बेशुमार तोहफे देने वाला, ये समझ लें गिफ्ट गिवर। कितना प्यारा नाम है अल्लाह ताला का, वो जो बहुत ज़्यादा तोहफे देने वाला है। और ये नहीं कि दूसरे का हक हो तो तब दे रहा है, ये नहीं कि उसको बदले में कुछ चाहिए तो वो तुमसे कोई बदले मांगता है, या ये भी नहीं कि आपने कोई मेहनत की है, कोई एफर्ट की है, कोई कोशिश की है तो तब दे रहा है। इनमें से कोई चीज़ भी नहीं, वो हर चीज़ हर एक को देता है। अल वहाब सब कुछ अता करने वाले को कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो जो भी नेमत इंसान को मिली हुई है वो हकीकत में अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। चाहे आपको असबाब नज़र आ रहे हैं किसी नेमत के, लेकिन दरअसल वो अल्लाह ताला ही है जो पीछे है, जो बहाने बहाने से मुसलसल अपने बंदों पे बे इंतहा गिफ्ट्स की, तोहफों की बारिश कर रहा है। जो किसी काम के इवज़ दिया जाए ना, कि आपने ये जॉब की है और उसके इवज़ आपको कुछ मिलता है, वो हिबा नहीं होता। वहाब से ही हिबा है ना, हिबा करने तोहफा, वो तोहफा नहीं होता, वो तो उजरत होती है ना। अल्लाह ताला उजरत नहीं दे रहा कि आपने कुछ करा है तो फिर आपको मिलेगा। अल्लाह ताला तोहफे दे रहा है, और तोहफा किसी को भी दिया जाता है बग़ैर किसी गर्ज के। ये जो यहाँ पे हमारे कहते हैं ना कि आप इतने की चीज़ खरीदें तो फ्री गिफ्ट है, वो भाई फ्री गिफ्ट का क्या होता है? गिफ्ट तो होता ही फ्री है, गिफ्ट के थोड़ी कोई पीछे वो होती कि कोई गर्ज हो। पहले ये करोगे तो फिर ये गिफ्ट मिलेगा। अगर मैं आपको कहूँ पहले आप ये याद करेंगे फिर आपको गिफ्ट दिया जाएगा, तो गिफ्ट नहीं, वो इनाम हो सकता है, प्राइज हो सकता है, लेकिन गिफ्ट नहीं हो सकता। हिबा जो है ना वो अलग चीज़ है। वहाबा से ही है, वहाब जो देने वाला गिफ्ट, और हिबा जो गिफ्ट है। जो इंसान किसी को गिफ्ट देता है ना, वो वाहिब तो हो सकता है, वहाब नहीं हो सकता। वाहिब वो है जो किसी को तोहफा देता है, मगर एक दफ़ा दे दिया, दो दफ़ा दे दिया, चार दफ़ा दे दिया। लेकिन वहाब में बहुत ज़्यादा मुबालगा है, ख़त्म ही ना हो और कोई गर्ज ना हो पीछे, ना फौरी हो और ना बदेर हो, ना अभी कोई। बाज़ दफ़ा होता है ना, आज किसी को कोई चीज़ दी है, अभी है कि कल को हमारे बच्चों की शादियाँ होंगी तो फिर ये भी देंगे, चलो आज से चाहे 10 साल बाद हो मिलेगी तो सही ना, ये फिर हिबा नहीं होता। हम इनको देंगे तो ये हमें देंगे, ये भी नहीं हिबा। या इसने मुझे दिया था तो अब मैं क्या करूँ, मुझे भी कुछ ले जाना ही पड़ेगा, ये भी नहीं हिबा होता। ये हदिया हो सकता है, हिबा नहीं हो सकता। और फिर अल्लाह ताला वो अल वहाब है ना, तो उसके जो तोहफे हैं वो भी प्राइसलेस हैं, इतने कीमती तोहफे देता है। इंशाल्लाह हम इसकी मिसाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैसे तोहफे कोई दे ही नहीं सकता। इसीलिए वहाब कोई इंसान नहीं हो सकता, किसी को वहाब कह के नहीं पुकारना चाहिए। अब्दुल वहाब कोई हो सकता है मगर वहाब नहीं हो सकता। और फिर वहाब वो है जिसको जाहिर है मुकम्मल इख्तियार है और कुदरत है ना, तभी वो हिबा कर सकता है। कि अगर आपकी कोई चीज़ ही नहीं है तो आप कैसे हिबा कर सकते। हिबा तो आपके पास कोई चीज़ होती है तो आप हिबा करते हैं ना, आप तोहफा किसी को देते हैं। तो जो चीज़ मिल्कियत में हो वही आगे दी जा सकती है, और अल्लाह ताला की मिल्कियत हर चीज़ पर है। तो अब आप सोचें गिफ्ट किसको दिए जाते हैं, बताएं आप किसको गिफ्ट देते हैं। दुश्मन को तो कोई भी नहीं गिफ्ट देता ना, किसको देते हैं जिससे आपको मोहब्बत होती है, जो आपको प्यारा लगता है। और मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी गिफ्ट दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तोहफे दो उससे मोहब्बत बढ़ती है, या आपस में एक दूसरे को तोहफे दिया करो। तो इसका मतलब है मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी होता है तोहफा, और उसी को तोहफा दिया जाता है जिससे मोहब्बत होती है, अपने प्यारे को किसी को दिया जाता है। और दूसरी बात, तोहफा कब दिया जाता है, जब कोई आपसे दूर होता है और आप उसकी तवज्जो चाहते हैं या उसकी आंख का तारा बनना चाहते हैं या उसको अपनी तरफ से यानी एक अटेंशन लेना चाहते हैं उसकी। मिसाल के तौर पे आपके कोई रिश्तेदार वगैरह नाराज़ हो जाए तो आप उनके घर तोहफा लेके पहुंच जाएंगे, ताकि अब वो आपसे आपकी तरफ एक तरह से उनकी बेरुखी ख़त्म हो जाए और आपस में आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। अल्लाह ताला जब तोहफे देता है ना, तो एक तो पहली बात ये कि वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है तो तोहफे देता है। मोहब्बत वाले को दी जाते ना, प्यारे को दिए जाते ना, तो उसको प्यार है तो वो तोहफे दे रहा। दूसरे उसके देखें ये जो सारे तहाइफ इंसान को मिले हुए हैं उसकी तरफ से, कोई उसको मानता है नहीं मानता, कोई उसके तरफ से तोहफा समझता भी है या नहीं समझता, वो फिर भी दिए चला जा रहा है। इसलिए कि देखें जैसे मैंने आपको दूसरी वजह बताई कि किसी की बेरुखी होती है, किसी के साथ नाराज़गी हो या कोई दिल के अंदर बात हो, तो तोहफा देने से वो सारी मिट जाती हैं और इंसान की तवज्जो वापस उसकी तरफ हो जाती है जो तोहफा देने वाला होता है। जो इंसान भी दूर हो जाता है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तोहफे देता है कि ये मेरी तरफ वापस मुतवज्जे हो जाए, वापस पलट आए। जब तोहफे पाएगा इंसान को बड़ा अच्छा लगता है तोहफा, है ना। आप देखें आपके हस्बैंड अगर आपको महीने का ख़र्चा देते हैं तो वो एक ख़र्चा है, ठीक है, लेकिन जिस दिन वो आपके लिए तोहफा ले आए खूबसूरत रैपिंग में, एक गिफ्ट ला के आपको दे दें, तो फिर खुशी की इंतहा नहीं रहती। हालांकि वो तो पहले भी देते हैं, हर महीने ख़र्चा देते हैं, लेकिन गिफ्ट की क्या बात होती है, उसकी बात ही और है ना। गिफ्ट इंसान को खुश कर देता है, गिफ्ट से इंसान का की तवज्जो गिफ्ट गिवर की तरफ हो जाती है, पहले से भी ज्यादा प्यार आने लगता है उस पे जो गिफ्ट देता है। लेकिन इंसान का मामला कुछ यूं है कि अक्सर वो गिफ्ट लेता जाता है, लेकिन उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं होती, और समझता है कि ये मेरी काबिलियत ही है कि मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं, मेरे कुछ अपनी जहानत होगी, मेरा ही कोई कारनामा होगा जिसकी वजह से मुझे ये सब मिला। वो किसी गिफ्ट के पीछे पहचानता ही नहीं है कि इसके साथ लिखा हुआ है फ्रॉम अल वहाब, पहचान ही नहीं पाता ये। अल्लाह अकबर, इसके बावजूद अल्लाह ताला देता जाता है। और ये नाम जो है अल वहाब कुरान करीम में 3 जगह पे आया, جس میں سے دو جگہ پہ تو دعاؤں کے سلسلے میں ہی آیا, دعاؤں میں لیا گیا یہ نام. جیسے اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اللہ تعالیٰ سے, ورب کی فارم میں جو آپ کو بتا رہی ہوں, تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ملک سے ہجرت کر کے نکل گئے, نہ فیملی ہے, نہ کوئی وطن ہے, نہ کوئی خاندان ہے, اس وقت انہوں نے دعا کی تھی, ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیکوں میں سے عطا فرما. اس سے کیا پتا چلا, حب لی ہبا ایسے ہے نا کہ اولاد ہبا ہے اللہ کی طرف سے. جب زکریہ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی اس وقت جب اتنے بوڑھے ہو گئے تھے, فرمایا تھا میری ہڈیاں یا اللہ کمزور ہو گئی ہیں, میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا, لیکن ربی لم اکم بھی دعا آئی کا ربی شقیہ, اے میرے رب میں تیری سے دعا مانگ کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا. یہ سورہ مریم میں آتا ہے نا, تو انہوں نے اس وقت ظاہری اسباب کو نہیں دیکھا کہ میں اتنا بوڑھا ہوں, میری بیوی بانج ہے, مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے. انہوں نے اس وقت مانگا تھا حبلی من لدنک ذریتا طیبا, اے میرے رب مجھے اولاد دے, پاکیزہ اولاد. اور اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ بھی انہوں نے حبلی فرمایا, ہبا کر دے, ایز اے گفٹ دے دے. ظاہری اسباب کچھ نہیں ہیں, ظاہری سامان اولاد ملنے کا نہیں ہے, لیکن اللہ یہ تیری طرف سے خاص گفٹ ہے, اللہ مجھے عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ نے جب اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی ہے تو اس کو بھی ایز اے گفٹ فرمایا, ہم نے گفٹ دیا ابراہیم علیہ السلام کو, تو اس کا مطلب اولاد بھی گفٹ ہے اور آگے جو گرینڈ چلڈرن ہیں, پوتے وغیرہ یا نواسے یا یہ بھی گفٹ ہیں. جب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام دیے تو فرمایا وَوَحَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَان, ہم نے داؤد کو سلیمان ایز گفٹ دیے. تو جب یہ زکریہ علیہ السلام کو بھی جب یحییٰ علیہ السلام ملے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا, حضرت مریم کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتہ آیا تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ایز اے گفٹ دینا چاہتے ہیں. یہ اس میں بھی یہی لفظ ہے ان آیات میں. تو قرآن کریم میں اس کا مطلب اولاد کو گفٹ کہا گیا ہے, اور نیک اولاد کے لیے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, جب ہم کہتے ہیں اللہ ہماری اسپاؤس ہمارے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ایز اے گفٹ, تو اس کا مطلب جو اولاد کی نیکی ہم مانگتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے گفٹ ہی ہے. اور ان تمام پیغمبروں نے نیک اولاد ہی مانگی ہے, صالح اولاد مانگی, طیب اولاد مانگی. تو جس کو اولاد چاہیے یا جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس الوہاب نام کے ساتھ مانگے, کیونکہ پیغمبروں نے بھی اسی نام کے تھرو مانگا. دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے قرآن سے کہ کس چیز کے لیے یہ لفظ آیا ہے, وہ جب انسان کو روحانی نعمتیں چاہیے اللہ کی طرف سے, جیسے کہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. یہ دیکھیں یہ ایک دعا ہے, اللہ مجھے حکمت دے, مجھے صالحین کا ساتھ دے دینا. اس میں بھی حکمت جو وزڈم مانگی گئی ہے وہ بھی ہبا کے طور پہ, یہ بھی ایک گفٹ ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحما, اللہ رحمت ہمیں دے دے. اور رحمت کے لیے بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ رحمت بھی تیرا گفٹ ہے, تمام طرح کی رحمت تیرا گفٹ ہے, اللہ مجھے عطا فرما دے. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ نام دعاؤں کے معاملے میں, کیونکہ سب اپنی دعائیں اسی نام کے ذریعے مانگ رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے جب بڑی مملکت مانگی تھی کہ اللہ ایسی بادشاہت دینا جیسی بادشاہت کبھی کسی کو نہیں ملی ہے, تو اس وقت انہوں نے بھی کیسے دعا مانگی تھی کہ انہوں نے مانگا تھا کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے, ربی حب لی ملکن, اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے ایز اے گفٹ, لا یمبغی لأحد من بعدی, جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ویسی ملے, انک انت الوہاب, کیونکہ تو وہاب ہے. پھر تیسری جگہ جہاں پہ یہ لفظ آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسالت ملی ہے, تو مشرکین بڑے اعتراض کر رہے تھے اس بات پہ کہ رسالت تو اگر ملنی تھی تو ہمیں ملنی چاہیے تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا, میں عندکم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, وہاں پہ بھی وہاب کا لفظ آیا. اور یہ ایک تو یہ اس معاملے میں اولاد کے معاملے میں آیا, اور روحانی جو نعمتیں ہیں ان کے معاملے میں بھی آیا. جب سلیمان علیہ السلام نے مانگی ہے بادشاہ تو اس معاملے میں بھی آیا. تو یہ زیادہ تر یعنی ہم دیکھیں دعاؤں کے لیے آیا, چاہے وہ اب دنیا کی بادشاہت مانگی سلیمان علیہ السلام نے, چاہے بادشاہت جیسی چیز ہو, اولاد ہو, نیکی ہو اولاد کی, یعنی یہ سارے تحفے ہیں نا اللہ کی طرف سے, یہ بتائیں ہمیں کیا کیا تحفے ملے ہیں اور ہماری بغیر ایفرٹ کے ملے ہوں. میرا خیال ہم سر سے پیر تک اللہ کے تحفوں کے اندر ہی گھرے ہوئے ہیں نا. آپ دیکھیں ہماری اپنی پیدائش ہی ایک تحفہ ہے, کیا ہم نے کمائی کی ہے یہ ہمیں انسان بنایا جائے, ہمیں ہاتھ پیر درست دیے جائیں, ہم کوئی چیز ہوں. حل تعالی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, انسان پہ کیا ایک لامتناہی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ وہ کچھ بھی چیز نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں پیدا کرنا ہی ایک اس کا گفٹ ہے کہ اس نے ایز ہیومن ایز انسان ہمیں پیدا کیا, اس نے ایک وجود ہمیں دیا. اور پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں, اللہ نے پتہ نہیں کیوں مجھے پیدا کر دیا, میرا کوئی فائدہ تو ہے نہیں, میری زندگی پتہ نہیں کیوں ہے. کیا تحفہ پانے پہ ایسا ریئیکشن کرنا اچھا ہے؟ آپ اگر کسی کو تحفہ دیں اور وہ آپ کے تحفے کو پھینکے رکھے, آپ اس کے بعد اگلی دفعہ اس کے گھر جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تحفہ گرا پڑا ہے, ادھر ادھر گرا پڑا ہے, اور اس کی قدر نہیں کر رہا, آپ کو کیسا لگتا ہے پھر؟ اور ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے تحفوں کی, جس کا دیے ہوئے تحفے لے کر ہم جی رہے ہیں, پھر شکوے بھی اسی کے کرنے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ ہماری تو کوئی دعا ہی نہیں قبول ہوتی. او تم یہ تو دیکھو بن مانگے تمہیں کتنا کچھ ملا ہوا ہے, ایسے ہم شکوے بھرے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں تحفے لے کر بھی کہ عقل تنگ رہ جاتی کہ کیا کیا کمی کی اللہ نے تمہارے لیے. انسان کے اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کھا کے دانت ٹوٹ جاتے لیکن زبان سے شکوے نہیں جاتے. اچھا بھلا کاروبار ہوگا, اس سے پوچھیں سنائیں کیسا کاروبار چل رہا ہے, بس جی گزارا ہی ہو رہا ہے, بس کیا کریں. اور آپ کو کیسا لگتا ہوگا بتائیں کہ میں نے اس پہ اتنا فضل و کرم کیا ہے, اتنے عطا کیا ہے اس کو, مگر اس کی زبان میری تعریف میں ایک کلمہ بھی نہیں کہتی. اچھی بھلی صحت ہوگی, چلتے پھرتے دوڑتے پھرتے ہوں گے, کوئی پوچھ لے کیا حال ہے, بس جی کیا پوچھتے ہیں, مجھے تو یہ لگا ہوا ہے, مجھے تو فلاں نہیں مسئلے لگے ہوئے, مجھے فلاں مسئلے لگے ہوئے. اسے پوچھیں بھائی کیسا کام چل رہا ہے, بس آج کل بڑا مندا ہے. یہ نہیں ہم کبھی کہتے یہ رب کا بڑا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ اکبر. تو نعمتیں تو انسان کو اتنی ملی ہیں, یہ جو ساری نعمتیں ہیں نا یہ ساری اس کی تحفے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام المنعم بھی ہے نا, قرآن میں تو نہیں آیا مگر ایز اے ورب تو یوز ہوا ہے نا, انعام علیہم, جن پہ تو نے انعام کیا. تو وہ نعمتیں دیتا ہے, نعمتوں کی بارش کرتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو اولاد ہے, کسی سے پوچھیں آپ کی اولاد کی کیا قیمت ہے, اگر آپ کسی سے پوچھیں گے وہ کیا کہے گا, ये प्राइसलेस है, तो वो कौन से तोहफे देता है जो प्राइसलेस हैं, इनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। हमारे आज़ाद देखें प्राइसलेस हैं। फिर इंसान को वो जो सिफात देता है ना कि कोई इंसान है, आप देखें हमें तो, हम तो इसमें भी अपना ही कमाल समझते हैं, लेकिन जो इंसान के अंदर वदियत की गई होती है, उसने कोई अर्न नहीं की, वो कमाई नहीं है। मसलन कोई लोग होते हैं बड़े, यानी बड़े दिल वाले होते हैं, जिसको कहते हैं कि खुले दिल वाले, खर्च करने में उनका हाथ रुकता नहीं है। ये खूबी कहाँ से मिली, उन वो कमाई तो नहीं उन्होंने। बस लोग बहुत नरम दिल होते हैं, उनका दिल बहुत हर एक के लिए बड़ा नरम होता है। ये कहाँ से उनको मिला, ये हिबा है अल्लाह की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना प्यारा दिल दिया था ना, क्योंकि आपने काम जो ऐसा करना था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फबीमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंतलहुम, अल्लाह की रहमत है आपके ऊपर क्या नबी, आप इनके ऊपर नरम हुए। तो ये जो हमें, जिसको हम बाज़ दफ़ा अच्छा ये वर्ड भी बोलते हैं, मगर मेरे ख्याल ऐसे ही बगैर सोचे समझे बोल देते हैं, हम कहते हैं ना ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, ये गॉड गिफ्टेड है मेरे अंदर। अच्छा बड़े उसके साथ बोलते हैं गॉड गिफ्टेड है, लेकिन गॉड गिफ्टेड का मतलब समझा, ये अल्लाह की तरफ से ही है, ये मैंने कोई कमाई नहीं की, वाकई वो हिबा होता है। आप देखिए फिर इसी तरह किसी के अंदर ये टैलेंट होता है कि वो अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई और अच्छे कोई ऐसे काम कर सकता है कि जो दूसरे नहीं कर पाते। ये टैलेंट्स भी कहाँ से आते हैं, किसी को अच्छी आवाज़ मिली होती है, किसी को कोई ऐसी और कोई चीज़ मिली होती है लिखाई की, यानी अच्छा लिख सकता है, उसके लिखाई में बड़ी तासीर होती है, कोई शायरी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, तो ये टैलेंट्स कहाँ से आते हैं, उसने क्या कमाइयाँ की हैं टैलेंट्स के लिए, या उसने क्या ये सिफात अपने अंदर पैदा करने के लिए कुछ एफर्ट की है। ये सब अल्लाह की तरफ से होती है और ये उसके तोहफे हैं। बाज में सब्र की बड़ी खूबी होती है, बड़ी बर्दाश्त करते हैं, तो ये भी अल्लाह का एक तोहफा है। हिदायत अल्लाह का तोहफा है, इतना बड़ा तोहफा है, इतना बड़ा गिफ्ट है जिसको ये गिफ्ट मिल जाए। तो ये सारे तहाइफ हैं। इसी तरह आप देखें नींद, अगर आपने कभी गौर किया है, नींद भी एक तोहफा है। क्या आपने मेहनत की है इसको कमाने के लिए, अल्लाह की तरफ से ये एक तोहफा मिलता है, आप सो जाएं। लेकिन देखें फिर भी तहाइफ में जबकि हमें दिन और रात मिल रहे हैं, हर वक्त मिल रहे हैं, क्यों हमारी नज़र तोहफा देने वाले की तरफ नहीं जाती। अगर आपके घर पे कोई बेल हो, आप दरवाज़ा खोले, एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स है, बड़ा सा गिफ्ट पड़ा हुआ, सबसे पहला ख्याल क्या आता है, किसने भेजा है, है ना। इंसान गिफ्ट गिवर की तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह भी तो बहुत सारे गिफ्ट देता है, हम उसकी तरफ क्यों नहीं मुतवज्जे होते। वो गिफ्ट भेजता जा रहा है और हम कभी भी नहीं सोचते ये मुझे कौन दे रहा है, इनके पीछे कौन है। तुम करीब आ जाओ उसके, तुम दूर जा चुके हैं, अब तोहफे लेके करीब आ जाओ, पूछो तो सही कौन है इनके पीछे। लेकिन इंसान इतना गाफिल होता है कि वो गिफ्ट में मगन हो जाता है, वो गिफ्ट गिवर को भूल जाता है। कितने ही लोग आपने देखे हैं वो इतना मांगते हैं अल्लाह हमें औलाद दे दे, ठीक है, जब औलाद हो जाती है अल्लाह उसको ये गिफ्ट दे देता है, उसके बाद बजाए इसके कि वो गिफ्ट गिवर के तरफ उनका दिल और मायल हो जाता है, उससे और मोहब्बत बढ़ जाती है, उसकी तरफ और मुतवज्जे हो जाते, वो पहली जो नमाजें थी वो भी अब गई, पहले जो कोई नेकी के काम करते थे कहते अब तो टाइम ही नहीं मिलता, अब बच्चे ने इतना बिजी कर लिया पूरा, ना कुरान का टाइम है, ना नमाज का टाइम है, ना इसका टाइम है। यही हाल आप शादियों के साथ देख लें, जब शादी नहीं थी तब कुछ थोड़ा बहुत जो करते थे, शादी हो गई नहीं आप तो कहाँ वक्त मिलता, अल्लाह ने आपको तोहफा दिया, आपका दिल तो उसकी तरफ झुक जाना चाहिए था, कि नेचुरल बात होती है ना, इंसान का दिल मायल होता है उसकी तरफ जो देने वाला होता है, जो उसकी साथ सखावत करता है, उसके लिए चाहत और बढ़ जाती है जिसकी तरफ से तोहफा आता है। लेकिन हम क्यों दूर हो जाते हैं? जॉब के लिए इतना, जॉब के लिए दुआएं करते रहेंगे, जॉब मिली तो अब दूर हो गए। देखें, एक छोटे बच्चे को भी पता है, मेरा बच्चा 4 साल का है माशाल्लाह, तो वो उसको स्कूल से गिफ्ट मिला जब स्कूल क्लोज होने लगा, उसने आके जो बात कही और मुझे ये इतनी बात इम्प्रेस की कि उसने कहा कि माय टीचर इज़ द बेस्ट गिफ्ट गिवर इन द होल वाइड वर्ल्ड। मैंने कहा एक छोटा बच्चा भी पहचानता है गिफ्ट देने वाले से उसको कितनी, उसने गिफ्ट नहीं खोला मगर उसने जो उसको मिलता था उसने उसको बताया कि मेरी टीचर ने मुझे ये गिफ्ट दिया है और वो बेस्ट गिफ्ट गिवर है। क्या एक खिलौना ही दिया था ना। लेकिन बच्चे फितरत पे होते हैं, हमारी फितरत मस्क हो जाती है। हल जजा अल एहसान ही लल एहसान, अल्लाह ताला ने फरमाया एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या कुछ हो सकता है। हम लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं और हम कभी ये नहीं कहते कि वो बेस्ट गिफ्ट गिवर है। बेस्ट गिफ्ट गिवर ही तो अल-वहाब है। तो जिसने गिफ्ट दिया होता है इंसान खुद ब खुद उसकी तरफ मायल होता है। या तो हम इन चीज़ों को क्या समझते हैं कि उसकी तरफ से नहीं है, या फिर हम ये समझते हैं हमारे ही कोई टैलेंट्स हैं या ये हैं, या फिर पता नहीं इतने गाफिल हो चुके हैं, इतने मस्त हैं कि बस लेते जा रहे हैं और ये एहसास ही नहीं अब रह गया कि हमें कोई कुछ देने वाला कोई है और कहीं से ये आ रहा है और किसी ने हमें तोहफ़तन दिया, ये एहसास ही ख़त्म हो जाता। हालांकि वो तो देखे, हमने उसकी सिफत पढ़ी ना, अलगनी, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज है, वो हमें फेंके रखे परवाह भी ना करे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। जो उसे बहुत मिन्नतें करके मांगे सिर्फ उसको दे और सिर्फ उतना सा दे, उसके अलावा किसी को ना दे, उसकी बातियात पे क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे बताएं। अरे वो हमसे मोहब्बत करता है ना, तो वो गिफ्ट भेजता जाता है, भेजता जाता है, भेजता जाता है और हम रिसीव करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। लेकिन हम कितने नाशुक्रे हैं कि जो उसी को नहीं समझ पाते जो रोज़ाना बारिश कर रहा है हमारे ऊपर गिफ्ट्स की। अच्छा, हम खुद तो इतने थुड़ दिले हैं और किसी को गिफ्ट दें और वो सोचें आप किसी को गिफ्ट देते हैं, आप वहीं पे, उसने ना ये देखा कि वो जो टैग पढ़ा ही नहीं उसने, और गिफ्ट निकाल के उसने कहा कितना खूबसूरत गिफ्ट है ये, और उसने उसको पहन भी लिया और उसको यूज़ भी करें, और आप देखते ही रह जाते हैं कि ये पढ़ तो ले के दिया किसने, मैंने दिया, ये ध्यान ही नहीं दे रही इस तरफ कि मैंने दिया इसको, इसको क्यों नहीं पता चल रहा कि मैंने दिया। अब आप अंदर से मचलते जाते हैं कि बस इसको पता चल जाए कि मैंने दिया है ना। हमें कितना ये होता है और लोग अल्लाह को नहीं पहचानते, वो फिर भी उसको दे रहा है, वो उसको मान ही नहीं रहे फिर भी उनको देता जाता है। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी शफकत है अपने बंदों पे, ये उसका रहम है अपने बंदों पे। अच्छा, लोग अपना कमाल समझ रहे हैं, वो फिर भी दे रहा है। हम तो अगर कोई ऐसा करेगा हम तो अगली दफ़ा उसको देंगे ही नहीं कि इसको क्या कदर है, तो समझती ही नहीं है, इसने तो पिछली दफ़ा भी मैंने इसको दिया था तो इसने तो कुछ देखा अब तक नहीं कि मैंने दिए, नहीं इसको देने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम ये सोचने लगते हैं। दूसरे हम जब किसी को गिफ्ट देने लगते हैं, एक दफ़ा देंगे, दो दफ़ा देंगे, अगर हमें कोई मसलन महीने में कोई 30 दिन 30 दफ़ा बुला ले तो हम तो गिफ्ट देने से भी आजेज आ जाते हैं कि अब 4-6 शादियां एक ही महीने में आ जाएं, तो हम कहते हैं कि अब कितने गिफ्ट दें। लेकिन अल्लाह ताला देते हुए थकता नहीं है और बेतहाशा देता है। हम तो देखेंगे पहले, अच्छा अभी ये बहुत महंगी चीज़ है, चलो थोड़ी सस्ती ले लेते हैं, थोड़ी ये बाद में दे दूंगी, ये नहीं अभी नहीं। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे तोहफे देता है जिनकी हम कीमत तक कभी अदा नहीं कर सकते। हम उनको जिसको कहेंगे ना कि वो बेमिसाल हैं, वो ऐसे तोहफे हैं जो प्राइसलेस हैं। और अल्लाह ताला जो इन तोहफों के साथ मैसेज हमें देता है कि हम उससे करीब हो जाएं, हमारी और उसके दरमियान के ताल्लुक बहाल हो जाएं, मोहब्बतें बढ़ जाएं, वो कहीं पे भी नजर आता। हम सोचते हैं बस मिल गया ना, बस चलो आप बस इसी के अंदर मगन रहो, और ये सोचें कि जो रब, जो अल-वहाब बगैर मांगे इतना कुछ देता है, तो जो कोई मांग ले तो उसको कितना देगा? पूरे यकीन के साथ, लेकिन अल-वहाब से जो मांगे क्या उसको ना देगा? और जब आपको किसी से गिफ्ट मिलता है तो आप क्या करते हैं? उसका शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो क्या उस अल-वहाब का शुक्रिया नहीं अदा करना जो दिन रात देता जा रहा है गिफ्ट? क्या उसके सारे गिफ्ट को हम जस्ट फॉर ग्रांटेड ही लेते रहें कि ये तो मिलने ही हैं और हमारा हक ही है कि हमें दिए जाएं? नहीं, आपका हक नहीं है। गिफ्ट कभी भी किसी का हक नहीं होता। आप मुझे गिफ्ट दे, मैं कहूँगी ये तो मेरा हक था, कैसा लगेगा आपको? हक तो नहीं होता, गिफ्ट तो वैसे ही दिया जाता है। अब गिफ्ट की हम चूंकि आपस में गिफ्ट देते लेते रहते हैं, तो गिफ्ट की अगर आप जिस्ट को समझते हैं ना, तो आपको ये नाम अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तोहफा ना तो किसी का हक होता है, ना किसी कोई बदले के लिए दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने जो तोहफे दिए हैं ना, इसके ऊपर अब हमें क्या कहना चाहिए उसको? उसका शुक्रिया कैसे अदा किया जाता है? थैंक यू बोल के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कह के, सुभान अल्लाह व बिहम्दी ही कह के। सबसे प्यारा तो अल्हम्दुलिल्लाह है लफ्ज, कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए। अब छोटी चीज़ वो हमें छोटी लगती है, लेकिन वो भी बहुत बड़ी होती है, इसलिए कि वो जो छोटी सी चीज़ है वो भी ना तो हम डिज़र्व करते हैं और ना ही उसको कहीं से ख़रीद के ला सकते हैं। एक समझ लें, एक ये जो छोटा सा नाखून है ना, हमारे लिए छोटी सी चीज़ है, क्या इसके अंदर कितना छोटा है ये नाखून ना, लेकिन अगर ये नाखून, अस्तग़फिरुल्लाह, अगर ये नाखून किसी दिन उखड़ जाए ना हो उंगली पे, कैसा लगेगा? बाज़ लोग तो फिर उसको टेप लगा के ही रखते हैं, ये नज़र ना आए, इतना बुरा लगता है, कितना हाथ भद्दा लगता है, और कितनी तकलीफ दे चीज़ है तो इतनी सी चीज़ हमें छोटी लगती है ना, लेकिन ये भी कितनी बड़ी होती है। तो वो छोटी इसलिए लग रही होती है क्योंकि हमारे पास हमेशा से जो होती हैं, इसलिए हमें उनकी कोई कदर नहीं होती। तो जब हमें तोहफा मिले तो एक सलीमुल फितरत जो इंसान होता है ना, उसकी जो इंसान की एक, अगर उसकी वाकई वो एहसान मंद होने वाला इंसान है, तो वो कदर करता है और शुक्रिया अदा करता है तोहफा मिलने पे। ना शुक्रा जो इंसान होता है, एहसान फरामोश जो होता है, वो फिर भूल जाता है। तो हमेशा शुक्र अदा करने वाले रहें, और शुक्र भी इट्सेल्फ एक नेमत है, एक ऐसी नेमत है कि अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे शुक्र की नेमत की तौफीक दे, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा नेमतक अल्लती अन्अमत अलैया वअला वालिदैया। ठीक है, तो इस अल्लाह से शुक्र मांगे भी कि अल्लाह मुझे शुक्र गुजार बना दे। और इसी नाम को लेकर बाज़ लोग वहाबी वहाबी कहते हैं, हालांकि देखो ये अल्लाह ताला का कितना प्यारा नाम है, किसी को भी इस तरह से उसको डिग्रेड करने के लिए या उसके उसके किसी अकीदे के ऊपर तान करने के लिए वहाबी का लफ्ज़ कहने लगते हैं। तो वहाब तो अल्लाह का नाम है, और इतना प्यारा नाम है, और उसको ऐसे यूज़ करना ये सही नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपने नामों को समझने की तौफीक दे, और इनके ज़रिए अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में बढ़ा दे। اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.